ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक देश का राजा अपने राज्य के विभिन्न गांवों में घूमने के लिए गया और एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां पर उसके कुर्ते की एक बटन निकल गई। तो उसने मंत्री से कहा कि जाओ जाकर देखो इस गांव में कोई दर्जी है, कोई टेलर जो ये बटन ठीक कर दे। तो मंत्री गए और मंत्री ने पता लगाया कि इस गांव में केवल एक ही टेलर है, एक ही दर्जी है और उसे बुलाया गया और राजा की कोट का जो बटन था वो उस दर्जी ने लगाया। बटन राजा के पास ही था, दर्जी केवल अपना धागा लेकर आया और उसने बटन लगा दिया। राजा ने पूछा इसके कितने पैसे हुए, तो दर्जी ने कहा नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के क्या पैसे। फिर भी राजा ने आग्रह किया कि तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें कितने पैसे हुए बताओ। तो दर्जी मन ही मन सोचता है कितने मांगू, इतना बड़ा राजा, तो सोचता है मैं 2 रुपए मांगता हूं। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़ी चीज थी, परंतु फिर मन में आता है कि यदि मैं 2 रुपए मांगू तो राजा कहेगा इतने से काम के तुमने 2 रुपए लिए, जब राजा से ही इतने पैसे लेते हो तो बाकियों से कितने लेते होंगे, और जबकि बटन भी मेरा और केवल तुम्हारा धागा, इतने से बटन लगाने के 2 रुपए। तो मन ही मन सोच विचार करता है कितने मांगू, 2 रुपए मांगू, फिर सोचता है नहीं 2 रुपए नहीं 1 रुपया मांगता हूं, फिर और सोचता है नहीं नहीं थोड़े ज्यादा मांगता हूं। तो मन में हलचल होती है कितने मांगू और कितने नहीं मांगू, काम छोटा सा है परंतु राजा का कोर्ट है। कभी सोचता है बिल्कुल ना मांगू, कभी सोचता है थोड़े मांगू, कभी सोचता है बहुत मांगू, परंतु अंततोगत्वा लास्ट में वो कहता है कि जितना आपको ठीक लगे आप दे दो। तो राजा तो फिर भी राजा है, राजा के भी अपने मान और मर्यादा का सवाल है। तो राजा मंत्री से कहता है इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाए, वो भी अपने स्टेटस अनुसार देगा ना। तो राजा कहता है इस दर्जी को 2 गांव, ये हुक्म है हमारा। कहां तो वो दर्जी पहले कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर मन में सोच रहा था 2 रुपए मांगू, फिर मन में सोच रहा था 1 रुपया मांगू, कभी सोच रहा था ज्यादा मांगू, कभी सोच रहा था कम मांगू, परंतु जब उसने सब कुछ राजा के ऊपर छोड़ दिया तो राजा ने क्या कर दिया, उसको भरपूर कर दिया, 2 गांव ही दे दिए। भगवान इस धरा पर आया है, हमें सब कुछ देने, केवल हम यदि उसके ऊपर छोड़ दे तो, यदि हम ऐसा उसके प्रति समर्पित हो जाए तो, जो तेरी इच्छा, तू जाने तेरा काम जाने, सब कुछ तेरा। तो अभी फिर से सभी योग युक्त होकर बैठेंगे, फिर से एक योग की ड्रिल करेंगे जिसमें हर एक बाबा से बातें करेंगे और बाबा से कहेंगे, बाबा मैं जो हूं जैसा हूं, जो हूं जैसी हूं तुम्हारी हूं, तन मन धन श्वास समय संकल्प बुद्धि संस्कार कर्म कर्म के परिणाम संबंध संपर्क सब कुछ तुम्हारा। तो सभी मन से तैयार हो जाएंगे और बाबा को अपने सामने देखेंगे और सब कुछ क्या कर देंगे, समर्पित। हे प्राणेश्वर बाबा, कहां हम भटक रहे थे और जीवन की इस अनंत यात्रा में तुम हमको मिल गए। आंखों को बंद कर देंगे और आंखों के सामने अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। बाबा मैं जो हूं जैसा हूं जैसी हूं तुम्हारा हूं तुम्हारी हूं, आज से ये जीवन तुम्हारा है। एक के प्रति समर्पण, ये तन भी तुम्हारा, ये मन भी तुम्हारा, ये धन भी तुम्हारा, ये बुद्धि तुम्हारी, ये संस्कार तुम्हारे, ये कर्म तुम्हारे, ये कर्मों के परिणाम तुम्हारे, ये संबंध तुम्हारे, ये संपर्क तुम्हारे, समय तुम्हारा, एक एक श्वास तुम्हारा, संपूर्ण हल्कापन सब कुछ बाबा को दे दिया। मेरा कुछ नहीं बचा, जो जो मेरा था अब तुम्हारा। संपूर्ण समर्पण, निर्बोध अवस्था, निर्भार अवस्था, ओम शांति। तो सभी ने दे दिया बाबा को सब कुछ, जिस जिसने दे दिया हाथ खड़ा करेंगे, सब कुछ, तन, मन, धन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, कर्म के परिणाम, श्वास, समय, संकल्प, सर्वस्व, जब तुम उसको सब कुछ दे देते हो तो वो तुम्हें सब कुछ दे देता है। बाप आए हैं हथेली पर बहिष्ट लेकर, मांगना नहीं है, उस पर छोड़ देना है। और जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तब हमें कुछ नहीं करना है, फिर वो करता है, फिर वो निर्णय करेगा कितनी जमीन और कितने गांव और कितनी बादशाहत और कितनी मालकियत और कितने खजाने किसको देने हैं। परंतु उसकी एक और शर्त है, और वो है उसने जो बातें कही, उसने जो श्रीमत बताई, उसने जो सिखाया, जो कायदे, जो कानून, जो नियम, जो मर्यादाएं बताई, उस पर चलना पड़ेगा। और उस पर चलना ही वास्तविक संपूर्ण समर्पण है। कोई अगर ये कहे कि बाबा हम तुम्हारे हैं, परंतु उसने जो कहा, उसने जो सिखाया, उसने जो श्रीमत दी, उस पर नहीं चल रहे हैं, तो वो झूठा समर्पण है, मिथ्या। और जो कायदे और जो नियम और जो मर्यादाएं उसने सिखाई है, उसने बताई है, वो एक एक मर्यादा, एक एक नियम शक्ति कवच है, बुलेट प्रूफ जैकेट, माया प्रूफ जैकेट। और जब तक आत्मा उस कवच को पहने हुए है, अभेद्य है। जैसे महाभारत में दिखाया है कर्ण के पास कवच कुंडल थे, वैसे कवच कुंडल थे कि कोई उसे मार नहीं सकता था, कोई शस्त्र कोई अस्त्र उस कवच को, उस कुंडल को भेद नहीं सकता था। परंतु जब उसका निर्णायक युद्ध अर्जुन से होने वाला था, उसी के पहले इंद्र आकर ब्राह्मण वेश में आकर उससे वो कवच ले जाते हैं। जब तक हमने मर्यादाओं का कवच पहन रखा है, हमारी हार हो नहीं सकती। आज की इस भट्टी में सर्वप्रथम हम बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने जो मर्यादाएं बताई है, उनकी चर्चा करेंगे। ऐसी 26 मर्यादाएं, कितनी मर्यादाएं? 26 मर्यादाएं। जो जो ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा इस ज्ञान मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहती है, उसे इन सारी 26 मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। एक एक मर्यादा में बल है, शक्ति है, और ये सभी मर्यादाएं सेवा केंद्र पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए है। इसके लिए इसे केवल अपनी डायरी में नोट नहीं करना है, परंतु रोज एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, याद रखना है, ताकि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, हम भूले ना। जैसे ही कोई मर्यादा भूल जाती है, जैसे ही कोई श्रीमत भूल जाती है, पाप हो जाता है, विकर्म होता है, कुकर्म हो जाता है और फिर पश्चाताप। आज सुबह कहा बाबा ने साकार मुरली में, एक का 100 गुना दंड। अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक एबीसीडी बनी हुई है। एबीसीडी के 26 अल्फाबेट्स है, 26 अक्षर, एक एक अक्षर से एक एक नियम या मर्यादाएं है। तो चालू करते हैं ए से। सभी अपनी नोटबुक में, डायरी में, या तो फिर बुद्धि की डायरी में सीधा परमानेंट हमेशा के लिए नोट कर ले, ताकि कोई भी श्रीमत मर्यादा नियम भूले नहीं। जब जब हम कोई मर्यादा को भूलते हैं, हर एक ने अनुभव किया होगा, दुख होता है, अपराध भाव जागता है, आत्मग्लानी, गिल्ट कॉन्शियसनेस। सबसे पहला नियम या सबसे पहली मर्यादा, ए फॉर अमृत वेला, ए से अमृत वेला। सारे दिनचर्या की शुरुआत, जिसकी जितनी ज्यादा शक्तिशाली है वो सारे दिन में उतना शक्तिशाली, जिसकी शुरुआत ही कमजोर है वो सारे दिन भर कमजोर, जो उठते ही व्यर्थ संकल्प, उठते ही परेशानी के संकल्प, उठते ही दुख के संकल्प, उठते ही विकार के, व्यर्थ के, निगेटिव संकल्प यदि आते हैं, तो वही संकल्प जो सुबह आए दिन भर चलेंगे। और यदि सुबह उठते ही पावरफुल, शक्तिशाली, प्यूरिटी के संकल्प आते हैं, तो सारी दिनचर्या भी उसी प्रमाण चलेगी। इसलिए ब्राह्मणों का पहला नियम है दिनचर्या का, अमृत वेला। यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं, तो दिनचर्या शक्तिशाली नहीं होगी। यदि अमृत वेला ही नियमित नहीं, दिनचर्या शक्तिशाली नहीं। यदि अमृत वेला ही साधारण है, व्यर्थ है, नींद से भरा हुआ है, कभी है कभी नहीं है, भरोसा नहीं है, ऐसा अमृत वेला है, तो दिनचर्या शक्तिशाली नहीं हो सकती। चाहे दिन में कितने भी क्लासेस सुन लो और कितना भी योग कर लो और कितनी मुरलियां सुन लो, पहले नियम को तोड़ा सजा मिलेगी। कौन सी सजा मिलेगी? स्थिति का गिर जाना ही सजा है। खुशी न रहना जीवन में, ये सजा है। कोई धर्मराज नहीं बैठा है हाथ में चाबुक लेकर। सजा कहां है? यहां और अब भी जीवन में उदासी छा जाना सजा, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, व्यर्थ संकल्प तेज चलना ही दंड है, कुछ भी करने की इच्छा न होना ही दंड है, कमजोर महसूस होना ही दंड है। और ये दंड आंतरिक है, बाहर से कोई व्यक्ति हमें यह दंड नहीं दे रहा है, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, हम स्वयं ही यह अनुभव करेंगे कि जीवन में रूखापन, सूखापन, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ फीका है। यह दंड है। संसार आकर्षित करेगा, विकार आकर्षित करेंगे, पाप आकर्षित करेगा, दैहिक आकर्षण खींचेगा, मनुष्यों का प्रेम आकर्षित करेगा। तो आज से सभी प्रतिज्ञा करनी है। सभी करेंगे प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? अमृत वेला उठने की या पावरफुल करने की? कितना पावरफुल, कितना पावरफुल करेंगे? बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि ऊपर से सीधा परमधाम से भगवान अवतरित हो जाए हमारे घर में और देखे कौन है। भक्ति में दिखाया है, संसार में कोई तपस्या करता है तो इंद्र का आसन डोलता है, तो परमधाम डोलने लगे। तो क्या करेंगे? अमृत वेला शक्तिशाली बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे, नियमित करेंगे। आज सुबह जो 4 बजे से पहले उठ गए थे वो हाथ खड़ा करेंगे। और जो 5 बजे उठे वो मन ही मन हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो सबके सामने गड़बड़ हो जाएगी। जो 6 बजे उठे प्रातः स्मरामिरिधि संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह उठकर उस आत्मा का चिंतन करना, सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम, सच्चा सुख उसमें है, परमहंस की गति है वो, तुरिया अवस्था है, द फोर्थ स्टेज, चेतना की चौथी अवस्था, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति के परे, द फोर्थ स्टेज, तुरिया जिसको कहा है, उस अवस्था का अनुभव, सुबह सुबह उठना और आत्मा को परमात्मा प्रेम से भर देना, ईश्वरीय शक्तियों से भर देना। यदि आत्मा शक्तियों से भर जाए तो फिर किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। शक्ति दो, प्रेम दो, सुख दो, शांति दो। तो स्वयं स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है आज सुबह की साकार मुरली में। बच्चे बाप से कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं, प्रश्न था ना, सभी ने सुनी मुरली। भारत को स्वर्ग बनाने की प्रतिज्ञा, स्वयं पवित्र रहे भारत को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा, और पवित्रता का वरदान, और पवित्रता की गंगा, और पवित्रता की अविरल धाराएं, अमृत वेला बहती है। उठो और डुबकी लगाओ पवित्रता की गंगा में। तो सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के लिए सबसे पहला नियम है अमृत वेला, दूसरा बी फॉर ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न संकल्प सभी में ब्रह्मचर्य, यह देह की तरफ आकर्षित ना हो। मिट्टी है देह, इस शरीर को मिट्टी समझना और इस संसार को असार। इस देह में क्या आकर्षण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, व्याधि बीमारी में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, जीवन के इस सत्य को जान और इस देह से उपराम हो जा। इस देह में कोई सौंदर्य नहीं, मल मूत्र से भरा हुआ यह देह, कहां है इसमें सौंदर्य? जाओ जाकर देखो, अस्पतालों में जो मरीज पड़े हैं, बूढ़े, लाचार, गरीब, कैंसर के पेशेंट्स, कहां है सौंदर्य? कोई सौंदर्य है इस शरीर में? फिर भी मनुष्य पागल है देह के पीछे। ब्रह्मचर्य अर्थात वह चर्या जो ब्रह्म में स्थित करे। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मा की ब्रह्मलोक की स्थिति, आत्मा की परमधाम की जो पवित्र स्थिति है, उस स्थिति को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मचर्य अर्थात काम जीत। ब्रह्मचर्य अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, जो ब्रह्मा की चर्या थी, ऐसी पवित्र चर्या, मन में विकारों का अंश भी ना हो, वह योगी जो ऐसे ब्रह्मचर्य में स्थित है, संसार की सबसे अधिक सेवा करता है, जिसकी पवित्रता अखंडित है, वही वास्तव में संसार का सबसे बड़ा सेवाधारी है। वो नहीं आज सुबह की मुरली, वो सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। रूहानी सोशल वर्कर अर्थात जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है और जो विश्व को पावन करता है। तो दूसरी प्रतिज्ञा करनी है, कौन सी? ब्रह्मचर्य की। सभी करेंगे? हाथ खड़ा करो, एकदम ऊंचा हाथ, भगवान देखे कि ये वो महावीर है जिनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता है, जरा भी विकार का अंश नहीं, तुच्छ है संसार के भोग। एक तरफ अतिंद्रिय सुख है और दूसरी तरफ देह के तुच्छ और विकारी सुख, क्षणिक सुख है, काम का सुख क्षणिक और दुख देने वाला है। इंद्रियों के मिलने से जो सुख है वो कभी भी चिरस्थाई नहीं हो सकता। वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त हो, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त हो, उसे अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। उसका देह से कोई संबंध नहीं। तो दूसरी प्रतिज्ञा करनी है ब्रह्मचर्य। तीसरा सी, सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल। हर एक ब्राह्मण कुलभूषण जो कि सेवा केंद्र पर जाता है, उसकी यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि सेवा केंद्र का वायुमंडल कैसे कर दे पावरफुल, शक्तिशाली। यदि दूषित विचार है, पाप के विचार है, व्यर्थ संकल्प है, तो वो व्यर्थ संकल्प वायुमंडल में फैलकर वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इसके लिए अपने विचारों को श्रेष्ठ करना है, महान करना है, शक्तिशाली बनाना है। वहां जाने के बाद एकाग्रता से संपूर्ण धारणा युक्त आज सुबह की मुरली में एक जगह बाबा ने कहा, कोई कोई तो ऐसे हैं जिनके कान जैसे बंद है, आकर बैठते हैं परंतु कान बंद है, सुन ही नहीं रहे। मुरली चल रही है पर कान बंद है, बुद्धि भटक रही है संसार में, संसार का चिंतन चल रहा है। सेवा केंद्र सेवा आश्रम है, सेवा केंद्र भगवान का घर है, सेवा केंद्र स्वयं एक तीर्थ है। जब तीर्थ स्थान पर लोग जाते थे या जो पहले तीर्थ स्थान पर गए हैं, तीर्थों की जिन्होंने यात्रा की है वो जानते होंगे कितनी पवित्रता का पालन किया जाता है। कितना ही व्यसन हो विकार हो परंतु जब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ स्थान पर रहते हैं और वापस आते हैं, तब तक संपूर्ण नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं। सेवा केंद्र सबसे महान तीर्थ है और वहां का वायुमंडल हमें शक्तिशाली बनाना भी है, उसे दूषित नहीं करना है अपने विचारों से। तो तीसरा कर्तव्य या मर्यादा है सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है, शक्तिशाली है और शक्तिशाली बनाना है। डी चौथी मर्यादा, डी फॉर ड्रेस कोड, डी फॉर ड्रेस। ब्राह्मणों का ड्रेस कौन सा है? श्वेत व्हाइट और बैच। संसार में वो सन्यासी है जो भगवे वस्त्र पहनते हैं, वो भगवे वस्त्र उनको याद दिलाते हैं कि हम संसार के नहीं, संसारी लोगों के बीच में है पर हम अलग, संसार के लोग अलग। वो बौद्ध भिक्षु अपना ड्रेस नहीं बदलते। हमारा भी ड्रेस है व्हाइट, क्योंकि इस व्हाइट में एक दाग भी हो तो दिखाई देगा। ज्यादा सबज संभाल कर चलना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और यह ड्रेस ही सेवा करेगा। लोगों को लगेगा कुछ तो है, कौन सी धारणाएं इनकी है, क्या ये बैच और क्यों लगाते हैं, कितना शूरवीरता का काम है, चारों तरफ विरोध और उसमें हमने यह ड्रेस धारण किया है, यह बैच पहना है। पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। संसार के रंग बिरंगी कपड़े, वो रंगों की दुनिया भटकाएगी, उसमें कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आज ये रंग, कल वो रंग, कल वो रंग, वो पहनो तो दूसरे हमारी ओर आकर्षित भी हो सकते हैं। हम किसी की ओर आकर्षित नहीं पर दूसरा अगर हो गया तो। कुमारियों से मुलाकात संडे की मुरली, कुमारी अर्थात किसी से भी प्रभावित ना हो, कुमारी अर्थात किसी से भी आकर्षित ना हो, कुमारी अर्थात जिसकी आंख किसी में ना डूबे। यदि दूसरे की आंख हम में डूबती है तो वो हमारी कमजोरी है। यदि हमने ही अपने आप को श्रृंगार किया है संसार के श्रृंगार से, क्रीम और पाउडर, बाबा ने सांप कहा उसे संडे की मुरली, और दूसरा कोई हमारे पीछे पड़ जाए और फिर हम कहे हम तो नहीं पड़े, वही हमारे पीछे पड़ा है, तो दोष किसका? ऐसा शक्ति स्वरूप बनकर चलना है। मां दुर्गा का अवतार, शेर पर सवार दुर्गा, हाथ में त्रिशूल है, किसी असुर आसुरी दृष्टि हम पर न पड़े, उसके लिए अपनी धारणाओं को इतना मजबूत पावरफुल बनाना है। तो कम से कम सेंटर पर जब आते हैं, कम से कम जब मधुबन जाते हैं या भट्टी के लिए आते हैं, तो यूनिफॉर्म में आना है। तुम हो रूहानी साल्वेशन आर्मी, वो आर्मी वाले यदि अपने सिविल ड्रेस में चला जाए परेड करने तो उसको लेंगे क्या उसमें? आर्मी का ड्रेस देखा है ना, कैसा ड्रेस होता है, मैच फुल ड्रेस शूज। फोर्थ है ड्रेस, अगला है ई, ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, सेवा केंद्र पर पैसों की लेन देन करना, बिजनेस करना, वर्ल्डली अफेयर्स। सेवा केंद्र का वायुमंडल तपस्या और योग का वायुमंडल है, वहां पर बिजनेस नहीं चालू कर देना है, आपस में बिजनेस की बातें, संसार की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, व्यर्थ की बातें, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। एक्सचेंज ऑफ मनी, बाबा ने कहा है ना दो ना लो उधार, हां कोई बहुत आवश्यक है किसी को तो ऐसी अवस्थाओं में दिया जा सकता है, परंतु लेने की कामना नहीं रखो, फिर वापस मिलेगा भी नहीं तो वही बंधन बन जाएगा। परंतु जितना हो सके उतना न देना न लेना, नीदर बी अ लेंडर नॉर बोरोवर, न देने वाला न लेने वाला, इस तरह का एक्सचेंज बिजनेस अफेयर, ये सेंटर की मर्यादा है। एफ अगली मर्यादा है, एफ एफ अर्थात फूड, बाहर का कौन कौन खाते हैं अभी तक? कोई भी नहीं, ईमानदारी से हाथ उठाने के भी मार्क्स है, इंद्र सभा है, इंद्र सभा, यहां पर यदि हाथ उठाया तो मार्क्स मिलेंगे, मदद मिलेगी। हम ब्राह्मण हैं, अन्न के तीन भाग हमारे शरीर में होते हैं, जो भी हम खाते हैं सबसे निचला भाग जाकर मल बनता है, दूसरा भाग जाकर शरीर बनता है, तीसरा भाग जाकर मन बनता है। जो जो मन को खिलाएंगे वो वैसा ही बनेगा। यदि किसी विकारी आत्मा का बनाया हुआ भोजन है तो उसके सारे वाइब्रेशंस उसमें होंगे और वही हमारे मन के संकल्प बनेंगे। सड़क पर रास्ते पर जो कुछ बनाया जा रहा है, किस संकल्प से वो व्यक्ति बना रहा है? क्या उसे परमात्मा की याद है? क्या वो भगवान को जानता है या अपने आप को जानता है? संपूर्ण अज्ञानी है, कोई खबर नहीं, संसार के विकार के संकल्प व्यर्थ के चल रहे और वही उसके भोजन में है और वही हम खा रहे हैं। कितना भी हम चाहे योग नहीं लगेगा, योग की स्थिति नहीं बनेगी। भोजन के कुछ स्तंभ है, हिंदी में चौका कहा जाता है, रसोई, चौका पता है? रसोई को, किचन को क्या कहते हैं? चौका। उसमें चार चीजें होनी चाहिए। पहला, किस पैसे से भोजन आ रहा है? यदि दो नंबर के पैसे से भोजन आ रहा है, किसी को पीड़ित करके, शोषण करके, करप्शन करके पैसा आ रहा है, तो उस पैसे से मन शक्तिशाली नहीं होगा। दूसरा, भोजन में यदि कंकड़, पत्थर, जाति दोष जिसको कहते हैं, वो बहुत सारा है, स्थूल कीड़े, तो भी वो शुद्ध भोजन नहीं। दूसरा, तीसरा, कैसा भोजन है वो, राजसिक है, तामसिक है या सात्विक है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, वेजिटेरियन है, क्या है, प्याज लहसुन वाला है, क्या है, बहुत तीखा, बहुत मिर्च, बहुत मसाले, राजसिक है, बासी, तामसिक है। भोजन हो सात्विक, शुद्ध। और चौथा आधार, भोजन बनाने वाले की मनस्थिति, किस अवस्था में भोजन बनाया जा रहा है, भगवान की याद में या नहीं। और एक चीज जो संसार वाले तो नहीं करते, भगवान को भोग लगाना। कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है, और भाई जो भोग लगाते हैं, भाई भी इतने सारे हैं, बहुत अच्छा। 24 घंटे में एक बार कम से कम भोग जरूर लगाना है। भगवान को प्रेम से उसे पहले स्वीकार कराना, फिर स्वयं खाना। जो माताएं नहीं लगाती, कल से भोजन को भोग लगाना शुरू करेंगी, अर्पण करना उसको। जो हम खा रहे हैं, सबसे पहले वो खाए, वो भोजन शुद्ध हो जाए, उसके बाद हम स्वीकार करें। और जिस जिस को वो भोजन खिलाए, घर में जो विरोधी है, घर में जो विरोध करते, अपोज करते हैं, घृणा है जिनके मन में, उनके मन में भी प्रेम उत्पन्न होगा। परंतु भोग भी विधिपूर्वक, ऐसे नहीं फटाफट इधर भोग लगा दिया और एक मिनट में थाली वापस, टाइम कम है, फटाफट फटाफट भोग, उधर भोग लगा दिया, हम इधर किचन में दूसरा काम, तब तक ऐसा भोग नहीं लगाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझे पत्र, पुष्प और फल, केवल इसका भोग भी लगा दे, तो मैं अनन्य भाव से उसे स्वीकार करता हूं। मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। साकार महावाक्य है बाबा के, बाप साहूकारों की महफिल में नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग है, बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहां सूखी रोटी है और जहां प्रेम है। तो रोज एक बार, और जो भाई भोजन नहीं बनाते, वो कम से कम भोजन को शक्तिशाली दृष्टि देते हुए, बाबा को अर्पण करते हुए उस भोजन को स्वीकार करे, तो उस भोजन में बल आएगा। 1988 की अव्यक्त मुरली है, बाबा ने कहा है, ब्रह्मा भोजन है दुख भंजक, दुख का नाश करने वाला। F for food, याद में बनाना, याद में खाना। और एक चीज वहां पर, केवल स्वाद के लिए ना हो। वो रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आता था हमेशा, जो काली के मंदिर पर बकरे का बलि चढ़ाता था। यही उसकी भक्ति थी। हर साल कई बार आता था और काली के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाता था। कई साल वो बीच में आया ही नहीं, तो उन्होंने, रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या काली मां से भक्ति कम हो गई, इतने सालों से नहीं आए। वो कहता है, अब क्या करूं, भक्ति तो बहुत है परंतु जब दांत ही नहीं रहे तो क्या काटूं। तो किसके लिए काट रहा था? एफ, एफ के बाद जी, जी अर्थात गिव अर्थात देना, गुड विशेस शुभ भावनाएं, ब्लेसिंग्स दुआएं, खुशी हैप्पीनेस, ये मर्यादा है। जो भी मिले उसे क्या देना है? शुभ भावनाएं देना, दुआएं देना, खुशी देना। मुरलियों में रोज आता है, कई बार आता है, ना दुख दो ना दुख लो। हरेक के प्रति कौन सा भाव हो? शुभ भाव। कोई कैसा भी हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। एच, एच अर्थात होली कंपनी अर्थात सत्संग। सत्संग के कई अर्थ है। सबसे ऊंचा अर्थ है एक का संग करना, एक सत्य बाप का। दूसरा है श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं का, योगियों का संग करना। विकारियों का संग नहीं करना, भोगी आत्माओं का संग नहीं करना, नहीं तो भोगी आत्माओं के संस्कार हमें अपनी तरफ खींचेंगे, उनकी तरफ। बैड कंपनी। कोई कितना भी अच्छा ज्ञान में चले परंतु यदि कुसंग में चला जाए तो डूब जाएगा। निरंतर सत्संग, सत्संग अर्थात जहां ज्ञान की बातें सुनाई जा रही है, सत्संग अर्थात जहां भगवान के महावाक्य सुनाई जा रहे हैं, सत्संग अर्थात कोई अच्छी क्लास, पुरुषार्थ की क्लास, सत्संग अर्थात कोई अच्छी किताब, चाहे पढ़ना, चाहे सुनना, चाहे रहना, श्रेष्ठ आत्माओं के साथ, महान आत्माओं के साथ, योगी आत्माओं के साथ, ये सत्संग करना है। और जो भी बैड कंपनी है, ऐसी आत्माओं से दोस्ती कर रखी है जिनका ज्ञान योग से कोई लेना देना नहीं, ऐसी आत्माओं के साथ मैत्री है जो ज्ञानी योगी नहीं है, जो विकारी है संसारी है, उनसे दोस्ती करके रखिए, या फिर वो दोस्ती ज्ञान में आने के पहले की है और वो अब तक भी निभा रहे हैं। ज्ञान में हम आ चुके हैं परंतु अभी भी उनके साथ होटल, सिनेमा, एडिक्शंस, वो सब यदि चालू है, स्टॉप करना है उसको। यदि हमारा जीवन अभी परिवर्तन हो चुका है, हम वो नहीं रहे जो पहले थे, दोस्ती अपनी जगह, परंतु यदि वो सच्चा दोस्त होगा तो हमारी सारी धारणाओं को भी वो स्वीकार करेगा, नहीं तो उसकी दोस्ती भी झूठी थी। कुसंग से स्वयं को बाहर निकालना है। वो कुसंग मित्रों का हो सकता है, साथियों का हो सकता है, कुसंग मीडिया का हो सकता है, सोशल मीडिया का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, चीप एंटरटेनमेंट का हो सकता है, टीवी का हो सकता है, इंटरनेट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एच, एच के बाद आय। अंग्रेजी शब्द है इनकल्केशन अर्थात धारण करना, इनकल्केट करना, ऑफ डिविनिटी। डिविनिटी में दो चीजें, दिव्य गुण और शक्तियां। तो अगला नियम या मर्यादा है दिव्य गुणों को या शक्तियों को धारण करना। सारे जो दिव्य गुण है, एक दिव्य गुण डिसिप्लिन, दूसरा दिव्य गुण उदाहरण के लिए समय पर आना, एक दिव्य गुण साइलेंस, ये सारे दिव्य गुण हैं। जो भी लिस्ट बनी है सेंटरों पर आपने देखी है, 36 दिव्य गुण हैं। वो सारे गुणों को अपने अंदर धारण करना ये मर्यादा है। 8 शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अंदर धारण करना ये मर्यादा है। आय के बाद है जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन। यहां से मधुबन जाने के जो नियम है उसी अनुसार उसको पालन करते हुए मधुबन जाना, और वहां जाने के बाद मधुबन किस लिए जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं, बाबा से मिलने। तो जिस काम के लिए जा रहे वही काम करना है। वहां भगवान से मिलने जा रहे हैं तो सारा समय शांतिवन के बाहर शॉपिंग में नहीं गुजारना है। वहां जा रहे भगवान से मिलने तो सारा समय इससे मिलूं उससे मिलूं, इससे लेन देन उससे लेन देन, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये सब में नहीं गवाना है। वहां जा रहे भगवान से मिलने तो वहां रहने वालों के अवगुण नहीं देखने लग जाना है। वहां जा रहे तपस्या करने भगवान से मिलने तो वहां जाकर क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, दिन रात खाऊं खाऊं, गए थे तपस्या करने परंतु कहां से क्या मिल जाए, गए थे तपस्या करने परंतु लग गए साइट सीइंग में, उदयपुर जाऊं इधर जाऊं वहां जाऊं, ये भी देख लू वो भी देख लू, ये भी नहीं देखा है वो भी नहीं देखा है, और देखने देखने में समय चला गया और भगवान रह गया बाजू में। 4 दिन इधर उधर घूमने में चला गया, फिर डायमंड हॉल में चले गए और बैठ गए और थोड़ा बहुत सुन लिया बाबा को, निकल के आ गए, और यहां सेंटर पे आने के बाद फिर बताना बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हम तो खो गए थे। और वहां क्या कर रहे थे, शॉपिंग, साड़ी, पर्स, कपड़े, एक बैग लेके जाते हैं आते समय 2 बैग हो जाती है, 2 कैसे हो जाती है, हो जाती है कि नहीं, मधुबन में जाना है तपस्या करने, मधुबन में जाना है स्वचिंतन करने, मधुबन में जाना है स्वदर्शन करने, भगवान से मिलन मनाने। भगवान से मिलन मनाना छोड़कर बाकी सब से मिलन मनाना चालू रहता है, जो बहुत दिनों के बाद मिले हैं उनसे मिलन मनाना चालू है, डिपार्टमेंट से मिलन मनाना चालू है, वहां के भाइयों से बहनों से मिलन मनाना चालू है, दुकानदारों से मिलन मनाना चालू है, परंतु भगवान से मिलन मनाना छूट गया। जिस काम के लिए जा रहे हो वही करना। जे के बाद के फॉर कीपिंग द चार्ट, चार्ट लिखना, चार्ट रखना, कीपिंग चार्ट। रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, बाबा को बताना हमने आज ये किया, आज ये पाप हो गया, आज ये विकर्म हो गया, आज हम अमृत वेला लेट उठ गए। यदि अमृत वेला 5 बजे आंख खुली तो क्या करोगे, क्या करेंगी माताएं, आंख खोली और देखा 6 बज गए, अब क्या करेंगी बताओ, क्या करेंगी? हाँ, 6 बजे पश्चाताप करेंगे और क्या करेंगे? बाबा को लेटर लिखेंगे और क्या करेंगे? हाँ, 6 बजे आंख खुल गई, बराबर सोए थे, 10 बजे सोए थे, नींद अच्छी आई, कोई डिस्टरबेंस नहीं, थकान भी नहीं, परंतु फिर भी अचानक 6 बजे आंख खुल गई, तो क्या करेंगे? जिनको रोज का अनुभव है वो बताएंगे, अमृत वेला वही से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? क्या 6 बजे उठे ही नहीं है? बहुत अच्छा, परंतु सबका ऐसा नहीं है, बराबर बोला ना। सबसे पहले तो नियम इतना मजबूत बना लो। जो स्टूडेंट सोचता है मुझे खाली पास होना है, बस 100 में से 30 मार्क्स 35 मार्क्स मिलने चाहिए, वो तो फेल ही होगा। परंतु जो स्टूडेंट सोचता है मुझे फर्स्ट आना है, वो कम से कम 5 के अंदर तो आएगा, एकदम फेल नहीं होगा। जो ये सोचेंगे मुझे 3:30 से पहले ही उठ जाना है, वो ज्यादा से ज्यादा 4:15 बजे उठेंगे, थोड़ा लेट हो सकता है। परंतु जो सोचते हैं मैं बराबर 4 बजे उठूंगा अमृत वेले, 4 बजे आंख खुली और देखा अभी 4 बजने को 5 मिनट बाकी है, फिर सोया और अगली बार उठा तो सीधा 5 मिनट, 5 कैसे बज गए पता ही नहीं चलता है। अभी अभी आंख लगी, 5 मिनट बाकी है, अगली बार आंख खुली तो 5। पहले तो होने ही नहीं देना है, अगर हो जाए तो फिर सारे दिन भर में डबल योग करना है, कवर करना है उसको। तो चार्ट लिखने की बात चल रही थी, चार्ट लिखो, कारण ढूंढो क्यों लेट उठे, कारण ढूंढो क्यों ये पाप हुआ, विकर्म हुआ, ये जो भी हुआ। सेल्फ चेकिंग, के बाद एल, एल अर्थात लव फॉर ओनली वन बाबा, अर्थात केवल और केवल एक बाप से प्यार। ढेर सारे मनुष्यों से यदि बुद्धि लगी हुई है या देहधारियों से बुद्धि अगर लगी है तो बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। आज सुबह की मुरली, दुनिया को भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, बाप तुम घर बार नहीं छोड़ते हो, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। तो एल फॉर लव फॉर वन बाबा, एल एम, एम फॉर मुरली क्लास। जो पिछले एक मास से एक दिन भी जिसने मुरली क्लास नहीं मिस किया, पिछले एक मास से जिसने हर दिन सेंटर पर आकर मुरली सुनी, ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, इन सबको इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाबा आपको इनाम देंगे और बाबा का इनाम है बाप दादा की दुआएं, परमात्मा दुआएं। पुरुषार्थ में अपने आप आगे बढ़ेंगे, परिस्थिति आएंगी, विघ्न आएंगे, गुप्त बल मिलेगा श्रीमत का पालन करने का। तो सेवा केंद्र पर आना और वहां बैठकर मुरली सुनना। कमरे में भी बैठकर मुरली सुनी जा सकती है, मोबाइल में भी सुनी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, कार में भी पढ़ी जा सकती है, सुनी जा सकती है, परंतु यज्ञ का नियम है सेवा केंद्र पर आना और मुरली सुनना। क्योंकि उस वायुमंडल में, उस वातावरण में, उस वर्तुल में आप प्रवेश करते हो जहां शक्ति का संचय है, और वहां आकर आत्मा में बल भर जाता है। इसके लिए मुरली क्लास रेगुलर, सभी प्रतिज्ञा करेंगे आज से, मुरली क्लास रेगुलर। जो हफ्ते में एक बार आते हैं वो बढ़ा देंगे उसको, दो बार कर देंगे, फिर जो दो बार आते हैं तीन बार कर देंगे, और धीरे धीरे उसको रेगुलर कर देना है। M for मुरली क्लास, N for no, no किन किन चीजों के लिए, no to cinema, no to TV serials, टीवी के सीरियल कौन कौन देखता है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे, बहुत मजा आता है टीवी सीरियल्स में, टाइम पास हो जाता है। अच्छा, पीस ऑफ माइंड छोड़ के टीवी के सीरियल हमने कहा। रिमोट हाथ में है, अभी अभी पीस ऑफ माइंड, अभी अभी सिनेमा, अभी अभी सीरियल, अभी अभी संसार के गीत, अभी अभी न्यूज़पेपर। चालू किया था पीस ऑफ माइंड देखने के लिए, पर जहां से एंड किया वहां फिल्मों के गीत थे। नो टू करप्शन भाइयों के लिए, ज्यादा पैसे मिल जाए, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। नो टू गैम्बलिंग, नो टू एडिक्शंस, लत विकार, सारे एडिक्शंस, सिगरेट स्मोकिंग से लेके सारे एडिक्शंस। बाबा का ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ऐसे कितने भाई बहने हैं जो चेन स्मोकर थे और एक धक से छोड़ दिया, और हमारे पास इतने सारे ऐसे मरीज आते हैं कितनी दिनों से सालों से कोशिश कर रहे हैं स्मोकिंग छोड़ने की, परंतु नहीं छोड़ पाते। बाहर के लोग कितने रिहैब सेवा पुनर्वसन केंद्र पर जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो दो मास रहकर आते हैं, उसके बाद आने के चार दिन के बाद फिर चालू कर देते हैं। तो भगवान का ज्ञान, ये सेवा केंद्र सबसे बड़ा रिहैब सेंटर है, पुनर्वसन केंद्र है। सारे व्यसनों से आत्मा मुक्त हो जाती है यदि रेगुलर आए तो। नो टू ऑल एडिक्शंस, नो की लिस्ट हर एक अपनी बनाए कि बाबा ने किन किन चीजों के लिए मना किया है। उसके बाद ओ अर्थात ऑब्जर्विंग श्रीमत, ऑब्जर्विंग ऑल प्रिंसिपल्स, अर्थात सारे नियम मर्यादाएं जितनी हम बता रहे उन सब का पालन करना। उसके बाद है पी अर्थात प्रिंटिंग लिटरेचर, सेवा केंद्र की जो बहने हैं, सेवा केंद्र के जो प्रभारी है, इंचार्ज है, हेड है, संचालिका है, उनको बिना पूछे सेवा केंद्र के स्टूडेंट्स विद्यार्थी लिटरेचर अपने ही मन से प्रिंट करें, बैनर बोर्डिंग्स होर्डिंग्स पाम्पलेट्स, ये यज्ञ का नियम नहीं है। जो भी प्रिंट किया जाए वो राय सलाह करके, मशवरा करके, पूछ कर, एडवाइस लेकर, सजेशन लेकर ही किया जाए। कोई अपने मन से अपने रीति से कोई प्रिंटिंग ना करे भाइयों के लिए। पी क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हम करें उसमें क्वालिटी हो, ऐसे नहीं फटाफट सेवा कर दी और चलो घर। भोजन बनाने सेवा केंद्र में आए तो पूरी ध्यान से अटेंशन से, किसी गीता पाठशाला पर भेजा गया है लगन से, सारे नियमों का पालन करते हुए, क्वालिटी मेंटेन करते हुए वो सेवा करनी है। केवल क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। जो भी काम दिया गया फुल क्वालिटी से उसको करना है। क्यू के बाद है आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, हमारे संबंध आपसी, आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, मधुर मिठास से भरे हुए। आपसी संबंधों में प्रेम और डिटैचमेंट भी साथ साथ हो, न्यारापन भी हो, टू मच अटैचमेंट ना हो और नफरत भी ना हो बीच में। कबीरा कड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दुश्मनी है ना किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती है, बीच में डिटैच्ड रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा, चले गए तो भी अच्छा। सेवा केंद्र पर चाहे हमारे संबंध भाइयों के साथ, बहनों के साथ, आने वाले विद्यार्थियों के साथ, बाहर के साथ, लौकिक वालों के साथ, ऑफिस वालों के साथ, सभी के साथ हमारे संबंधों में क्या हो, मधुरता, मिठास, नफरत, वैर, ईर्ष्या, विरोध, क्रिटिसिज्म, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब चीजें ना हो। अगर है तो उन्हें ठीक करना है, अपने संबंधों को रिपेयर करना है, जो जो क्रैक्स उसमें है, जो जो डिफेक्ट्स उसमें है, उसको ठीक करते जाना है। आर, आर के बाद है एस, एस अर्थात साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। अपनी दिनचर्या में हर एक को ये दो चीजें लानी है, कौन सी, मौन को और एकांत को। सुबह से लेकर रात तक बोलते नहीं जाना है, बोलते रहे, बोल रहे, बोल रहे, बोल रहे, बोल रहे, बीच बीच में मौन, सुबह कम से कम 8 बजे तक मौन, शाम को फिर मौन, फिर थोड़ा एकांत, और उस मौन और एकांत में स्वचिंतन और ज्ञान का चिंतन करना है। उसके बाद है टी, टी अर्थात ट्रस्टी, ये जो भी है, घर, परिवार, बच्चे, पति, पत्नी, सब कुछ उसका है, हमें संभालने के लिए दिया गया है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ, गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बनो। तो जैसे अभी अभी हमने अभ्यास किया था समर्पण का, वैसा अभ्यास बीच बीच में करते रहना। क्या करेंगे, सब कुछ सौंप देना। उसके बाद है यू, यू अर्थात यूटिलाइजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेस, समय की बचत और बाकी जो साधन है उनकी बचत करना, ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पानी, समय, कुछ भी वेस्ट ना हो, ये एक मर्यादा है, इसके बारे में हम और आगे देखेंगे किसी क्लास में। यू, यू के बाद वी, वी अर्थात विजिटिंग अदर सेंटर, जब भी एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र पर जा रहे हो तो क्या चाहिए, एक लेटर, ऐसे ही नहीं चले जाना किसी दूसरे सेवा केंद्र पर, जिस सेवा केंद्र पर हम रहते हैं वहां से क्या लेंगे, एक लेटर लेंगे और वो लेटर लेकर जाएंगे। उसी तरह मधुबन जाते समय भी एक लेटर हो। वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर बाथ, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर, जब भी हम डेफिकेशन अर्थात स्नान वगैरह करना है, जब भी हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं तब, यह यज्ञ का एक नियम बना हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक कारण भी है। शौचालय जाने के बाद स्नान अवश्य करना है हर एक को, वॉश आफ्टर बॉवल मूवमेंट्स जिसको कहते हैं। डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात खुद की चेकिंग करना, जैसे एक्सरे में सब कुछ दिखाई देता है, कहां हड्डी टूटी है, कहां क्या हो रहा है, उसी तरह आत्मा का एक्सरे करना और उसमें चेकिंग करना, कहां क्या दोष रह गया है, कहां कौन सा फ्रैक्चर है, इमोशनल फ्रैक्चर्स, भावनात्मक फ्रैक्चर, कहां क्या दोष है, एक्सरे करना अपनी आत्मा का रोज, एक बार या दो बार। एक्स के बाद वाई, वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, अर्थात योग का अभ्यास दिन में दो बार, एक अमृत वेला और दूसरा रुमाच्छाम का योग। ऐसे यहां पर कितने हैं जो रेगुलर रुमाच्छाम का योग करते हैं? इसमें भी बहुत है। तो ये जैसे अमृत वेला शक्तिशाली, वैसे शाम का योग भी शक्तिशाली हो, 6:30 से 7:30 या फिर 7 से 7:30, आधा घंटा कम से कम, जहां पर भी है बैठकर योग करना है, फिर से अपने मन को एकाग्र करना है, फिर से अशरीरी जो सुबह सारे अभ्यास किए फिर से उनको रिपीट करना है या उनमें नवीनता लानी है, नए योग के प्रयोग। वाय और लास्ट है जेड, 26वीं मर्यादा। जेड अर्थात झील, झील अर्थात उमंग उत्साह, झील इन सर्विस। अभी तक की सारी पॉइंट्स में सेवा की कोई पॉइंट नहीं थी, तो ये पॉइंट है, सेवा जब भी करो तो कैसे करो, खुशी खुशी से, उमंग उत्साह से, दुखी होकर नहीं, मजबूरी से नहीं, कैसे तो भी कर दिया और चले गए घर, काम चलाऊ वाली नहीं, प्यार से, ये समझकर कि ये भगवान के यज्ञ की सेवा है। तो ऐसे ये टोटल कितने हो गए, 26 मर्यादाएं। ज्यादा तो नहीं हो गई, याद है सभी को? तो अभी एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद हम कुछ एक्टिविटी करेंगे और फिर और क्लास होगी। ए फॉर, जोर से बोलेंगे सभी, अमृत वेला। बी फॉर ब्रह्मचर्य। सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर। डी फॉर ड्रेस। डी ई फॉर एक्सचेंज मनी नहीं करनी है। एफ फूड। जी फॉर गिव हैप्पीनेस ब्लेसिंग गुड विशेस, शुभ भावनाएं दुआएं और खुशी देना बांटना। जी एच होली, होली कंपनी अर्थात सत्संग। एच आई इनकल्केशन ऑफ डिविनिटी अर्थात सारे गुण और शक्तियों को धारण करना। आई जे फॉर जर्नी टू मधुबन। जे जे के बाद के कीपिंग चार्ट। एल लव फॉर वन बाबा। एम मुरली क्लास। एन एन से नो 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 की लिस्ट खुद अपनी बनानी है, ये होमवर्क है आपको, कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये तो हमने 2-3 बताई, पर आप इस पर चिंतन करो, ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो बाबा ने जिसके लिए मना किया है। M N O O for observing all principles. O P for printing literature. P Q for quality control. Q R R for सारे संबंधों में मिठास। यदि टकराव है, झगड़ा है किसी से, मन मुटाव है, वैमनस्य है, बदले की भावना है, हीन भावना है, सुपियोरिटी और इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सबको ठीक करना है श्रीमत के आधार से, अमृत वेले से। क्यू आर एस साइलेंस सॉलिट्यूड एकांत और मौन। एस टी ट्रस्टी। यू यूटिलाइजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेस इन वर्थवाइल वे, समय और साधनों का उचित प्रयोग करना, वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना, कोई भी चीज। उसके बाद टी यू वी, वी अर्थात दूसरे सेवा केंद्र को विजिट, उसके नियम। डब्ल्यू वॉश आफ्टर बॉवेल मूवमेंट, ये तो सब करते ही है। और डब्ल्यू एक्स एक्सरे। वाई योग दो बार। और जेड झील, झील अंग्रेजी शब्द है, झील अर्थात उमंग उत्साह। तो अभी सभी अलर्ट होके फिर से बैठेंगे एक बार और आंखें बंद करेंगे और अपने मन में ए से लेकर जेड तक सारा रिवाइज करेंगे बिना देखे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको ब्रेक दिया जाएगा 10 मिनट का। ओम शांति।